نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله پارا نمبر 28 جو ہمارے پاس ہے ایک ایسا دن بھی تھا کہ جب ہم تیسرے پارے پہ تھے اور آج تین رہ گئے اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے پارے کا نام سورت کے اندر آنے والے لفظ پہ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اس میں ہمیں جو چیز نظر آئے گی وہ خاندانی زندگی ہے 28 پارا ایک گھریلو پارا ہے جس میں دین اور گھر کو کیسے ساتھ لے کے چلا جائے جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں پہلی صورت سمیت کم و بیش ایک عادت کو چھوڑ کر سب میں عورتوں کا خواتین کا ذکر ہے خاص طور پہ بیویوں کا یہ صورت آپ کو مجھے اب اس قابل کرتی ہے کہ جب ہم نے دین کے کام ساری زندگی کرنے ہیں آخری دم تک کرنے ہیں تو گھر والوں کو دشمن بنا کے نہیں ہو سکتے حزب اقتدار اور حزب اختلاف والا رول نہیں ہونا چاہیے اس میں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے گھر بنا رہے گھر نہ ٹوٹے اور یہی فکر تھی بی بی خولہ کی جن پہ پہلی صورت ہے تو صحابہ کرام کا جو اینگل اور خاص طور پہ اس بارے میں صحابیات پہ ہم جو کچھ پڑھیں گے آپ اس میں ایک کامن تھنگ نوٹ کریں گے کہ پریشانیوں میں رب کا سہارا لیتے تھے یہ لوگ ہم دوسروں کو سناتے ہیں ان کی کونسلنگ لوگ نہیں کرتے تھے یہ اللہ سے کرتے تھے یہ کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس جا کر ایک گھنٹے کے پیسے دے کر دل ہلکا نہیں کرتے تھے یہ اللہ کے سامنے رو دھو کے سجدے کرتے تھے اور اسی طرح سے بہت کچھ اس بارے میں جو صحابہ کے تذکرے ہیں اس میں ایک تو حاطب نبی بلدا کا قصہ آئے گا سورت ممتحنہ کے ساتھ سناؤں گی انشاءاللہ خولہ بنت سالبہ ہیں جن کا پہلی صورت سے ہی تعلق ہے اسی طرح اس میں ایک صحابی جنہوں نے مہمان نوازی ایسی کی کہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا سورت حشر میں وہ بھی اس پارے کی شخصیت ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ذکر کرتے رہیں گے پارے کے دوران آج کی دعا کیا ہے پریشانی میں اللہ کا ذکر کرنا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم یہ انشاءاللہ ہم سورة حشر کے اینڈ پہ پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں سورت مجادلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سورت مجادلہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک جھگڑے کا تذکرہ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر رکوع نمبر 1 ہے 1 سے 6 پہلی 6 آیات ہیں زہار کی حقیقت اور کفارہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی اللہ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے نوٹ کیجئے سوتیلے اور رشتے بنائے بھائی بنایا بیٹا بنایا اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا یہی بات سورت الاحزاب میں بھی ہم نے پڑھی تھی سگی ماں ماں ہے یا سوتیلی ماں وہ جو باپ کی بیوی ہو ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی بھی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے ایک ٹنگ سلپ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے انتی علیہ کا ظاہری امی یہ لفظ ہے انتی تم علیہ میرے اوپر کا ظاہری جیسے پشت امی میری ماں کی ہے عرب لوگوں میں طلاق دینے کا یہ رواج تھا اور یہ طریقہ تھا بیوی کے لیے جب یہ لفظ بول دیتے تو ہمیشہ کی طلاق ہو جاتی خولہ نام کی ایک عورت کے بوڑھے شوہر جو بیمار بھی تھے مزاج کے تیز بھی تھے انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا آج کی بیوی ہوتی کہتی اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹی सारी ज़िंदगी गालियाँ खाई हैं, बुढ़ापे में तो सठिया गए हैं। नहीं, घर जोड़ने वाली औरतें, इज्जत बना के रखने वाली औरत थी वो। कहने लगी, अल्लाह के नबी, बुढ़ापे में इनको कौन संभालेगा? मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन करेगा? ऐसी होती हैं जन्नती औरतें। और ये फिर ले आती हैं अपने शौहरों को दीन की तरफ। एक वक्त आता है, आदतों का इख्तलाफ गवारा कीजिए, दीन का बिगाड़ नहीं गवारा करना। खैर, अल्लाह के नबी के पास आती हैं। अल्लाह के नबी उस वक़्त के कानून के मुताबिक बोल ही नहीं रहे, क्योंकि सूरह नजम में पढ़ लिया कि आप तो वही के सिवा बोलते ही नहीं थे। खामोश है, बार बार कह रही हैं, आपने कहा मैं क्या कह सकता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। हज़रत आयशा जो हुजरे में बैठी देख रही हैं और कहती है, मैंने देखा वो औरत अपनी जगह से उठी, जाके मस्जिद नबी में सजदे में जाके कुछ खुसर खुसर कर रही है। कहती, मैं एक कमरे में होने के बावजूद नहीं सुन सकी, जैसे मैं माइक बंद करूं तो आपको पीछे मेरी आवाज़ नहीं आएगी ना। लेकिन अल्लाह ने आसमानों से पुकार लगा दी, कद समे अल्लाह गौल्लती तुजा दिलु कफी जोजी। क्या पता चला कि आम सी औरत, अगर उनका तذکرہ इसमें ना आता तो हमें पता भी नहीं था कि खौला नाम की कोई सहाबिया भी थी। लेकिन एक घरेलू मामले में अल्लाह ने उस औरत को इतनी इज्जत दी, इतना मकाम दिया कि ज़िहार का कानून दे दिया, कानून बदल दिया, मसला बदल दिया। इसीलिए फरमाया, जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें, फिर वो एक दफ़ा के लफ्ज़ के बदले में 2 महीने के मुस्तकिल रोज़े, मुतताबियन और कंटिन्यूस, यानी एक रोज़ा छूट गया तो फिर पहले से शुरू, या फिर ग़ुलाम आज़ाद करें। इसके ज़रिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए, इसके ज़िम्मे 2 महीने के लगातार रोज़े हैं, इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिस शख्स को ये ताकत ना हो, इस पर 60 मिसकिनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं और कुफार ही के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वो जलील किए जाएंगे, जैसे इनसे पहले के लोग जलील किए गए थे। और बेशक हम वाज़े आयतें उतार चुके हैं, और कुफार के लिए तो ज़िल्लत वाला अज़ाब है। जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को उठाएगा, फिर इन्हें इनके किए हुए अमल से आगाह करेगा, जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है, जिसे वो भूल गए थे, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो ये थी जी खौला बिनते सालबा की कहानी। अपने शौहर का शिकवा अल्लाह से किया, सहेली से नहीं, माँ से नहीं, बहन से नहीं, किसी पुलिस वाले इदारे से नहीं, क्राइसिस सेंटर से नहीं। अल्लाह ने उनका फ़ैसला आसमान से उतारा। अल्लाह के नबी से हल ना मिला तो अल्लाह का दर खटखटा दिया। हज़रत आयशा की रिवायत सुन लीजिए, कहती है कि बाबरकत है वो ज़ात जो हर चीज़ को सुनने वाला है। मैं खौला बिनते सालबा की बात सुन रही थी, कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, और अल्लाह के रसूल से अपने शौहर की वो शिकायत कर रही थी कि मेरा शौहर मेरी जवानी खा गया, मैं इसकी औलाद जनती रही, और जब मैं बूढ़ी हो गई और विलादत का सिलसिला मुनक़ते हो गया तो इसने मुझसे ज़िहार कर लिया। औरत थी। अल्लाह, मैं तुझसे ही शिकवा करती हूँ, वो भी वहाँ से हटी ही नहीं थी कि जिब्राइल आयतें लेकर उतर आए। क़द समे अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा। इसे इब्ने माजा की रिवायत है 2603। क्या पता चला कि अल्लाह सुनता है। आप भी रुकू में से उठते हुए क्या कहती हैं? समे अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह भी आपको ख्वाबों में बता देता है, जब कोई बात होनी होती है अल्लाह कहता है समे अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली तुम्हारी दुआएं। हज़रत उमर का दौर था, आप कुछ लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। एक औरत ने आपको रोका और बातें शुरू कर दी, बड़ी देर बातें करती रही, नसीहत करती रही। हज़रत उमर के साथियों ने कहा, उमर, एक आम सी औरत के लिए आपने इतना वक्त दे दिया? आपने फरमाया, मुझे वो इससे भी ज़्यादा वक्त अगर रोकती तो मैं रुका रहता और उनकी बातें सुनता रहता, क्योंकि ये वो खौला बिनते सालबा हैं कि जिनकी बात अल्लाह ताला ने सुनी और कुरान की आयतें नाजिल हुई। यदि मैं क्यों ना सुनूँ उसकी बात। तो इस खातून ने अपने घरेलू मसले को तन्हाई में पेश किया कि किसी को बताइएगा नहीं, अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए कुरान में दे दिया। आज भी कभी कभी वो लोग जो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं, लोगों के साथ होते हैं, वो अपनी मिसालें बीच में ले आते हैं। किस लिए लाते हैं? बदनाम करने के लिए नाम लेते हैं उनके। किसी के तो वहमो गुमान में भी नहीं होता, लेकिन दूसरों की हिदायत का ज़रिया बन जाए, हो सकता है उसी वजह से अगले का वो मसला हल हो जाए कि चलो उसके ज़रिए किसी की इसलाह हो गई। फिर यहाँ ज़िहार का कफ़ारा है एक ग़ुलाम आज़ाद करना, ग़ुलाम ना पाए तो 2 माह के लगातार रोज़े, रोज़े ना रख सके तो 60 मिसकीनों को खाना खिलाना। आपने मैंने क्या करना है, झूठी बातें नहीं करनी, कुफर नहीं करना, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत नहीं करनी, और अपने आमाल को भूल नहीं जाना, और साथ ही साथ अपने दुख, अपने सदमे, अपने गम अल्लाह के सामने पेश करने हैं। रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 7 से 13, 7 to 13। अच्छी और बुरी नजवा का फ़र्क। अलम तरन अल्लाह यालमु मा फिस समावात, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है। 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह इनका चौथा होता है, और ना 5 की मगर वो इनका छठा होता है, और ना इससे कम और ना ज़्यादा की मगर वो साथ ही होता है। जहाँ भी वो हों फिर क़्यामत के दिन इन्हें इनके अमाल से आगाह करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जो कानों में बातें करते थे और उनको रोक दिया गया, फिर वो इसी रोके हुए काम को दोबारा करते हैं, यानी आदत पड़ी हुई है कानों में बात करने की, और आपस में गुनाह की और जुल्म और ज़्यादती की और नाफरमानी पैगंबर की सरगोशियाँ करते हैं, और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन अल्फाज में सलाम करते हैं जिन अल्फाज में अल्लाह ताला ने नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम कहते थे यहूद नबी को, अस्सलाम वालेकुम की जगह, मतलब पता है तुम पे मौत हो, नाउज़ुबिल्लाह। और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह हमें इस पर जो हम कहते हैं सज़ा क्यों नहीं देता। मौकरी फन, हाँ, देखो हमें कुछ भी नहीं हुआ, हमने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया। अच्छा, ये नबी ही नहीं होते तो अल्लाह ज़रूर हमारी ज़ुबान नहीं पकड़ता। फरमाया, ना, इनके लिए जहन्नुम काफ़ी सज़ा है जिसमें ये जाएंगे, सो वो बुरा ठिकाना है। ईमान वालों, जब तुम सरगोशी करो तो ये सरगोशियाँ गुनाह और जुल्म और ज़्यादती और नाफरमानी पैगंबर की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो, और इस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे, सिवाय इसके नहीं बुरी सरगोशियाँ शैतानी काम है कि जिससे ईमानदारों को रंज पहुँचे, गो अल्लाह तला की इजाज़त के बगैर वो इन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते। और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह तला पर भरोसा रखें। ऐ मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में ज़रा कुशादगी पैदा करो तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें कुशादगी देगा, और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद कर देगा, और अल्लाह ताला हर काम में से जो तुम कर रहे हो खूब वाकिफ़ और ख़बरदार है। ऐ मुसलमानों, जब तुम अल्लाह के रसूल से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दिया करो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर और पाकीज़ा तर है। हाँ, अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए? बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ़ फरमा दिया, तो अब आप बखूबी नमाज़ों को कायम रखो, ज़कात देते रहो, और अल्लाह ताला की और इसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ करते हो इस सब से अल्लाह ताला खूब खबरदार है। मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ज़्यादा वक्त बैठना चाहते थे, करीब रहते, बातें करते, इधर आगे पीछे फिरते। 2-3 फ़ायदे थे, एक तो यह कि लोग देख लें कि हम VIPs हैं, हम क्लोज लोग हैं, और दूसरी बात है कि ज़रा करीब रह के कुछ राज भी ले लें, और आपका वक्त ज़ाया करते। अल्लाह के नबी एक मसरूफ़ इंसान थे, अल्लाह ने तरबियत के लिए उनको नहीं सहाबा समेत सबको कह दिया, नबी से जब भी बात करनी हो तो पहले सदक़े में कुछ डालो, सदका बॉक्स में डालो, यानी गोया कि आपसे मुलाकात का कंसल्टेशन फ़ीस लो। अब वो मुनाफिक जो तो वैसे ही हवा पर उलाते, पैसा देते हुए तो जान निकलती है, पीछे हो गए। हज़रत अली को अल्लाह के नबी से काम था, उन्होंने सदका किया और आकर अल्लाह के नबी से बात की और चले गए। जब तरबियत हो गई, सब ठीक हो गए, कानून उठा लिया, बड़ा मुख्तसरुल वक्त कानून था, इसका तस्करा गुजरा। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के सहाबा की तरबियत इस तरह भी की गई। हमने भी ये सुन्नत अपने स्कूल में रखी हुई है, कोई हमारे या मेरे से या आप में से जिससे भी जो भी ज़िम्मेदार है कोई नुकसान हो जाता है स्कूल का, बिजली की लाइट खुली चली गई, लाइट खुली रह गई चले गई, आपकी ज़िम्मेदारी थी बंद करना, अब नहीं की, अगले दिन आए तो लाइट चल रही थी, बताइए ज़रा 12 घंटे लाइट जले तो कितने को पैसे आते हैं बिजली के बिल के? सदका करते हैं, ये है बरकत। और मेरा गुमान है कि हमारे हर इंस्टीट्यूट में आज भी लोगों के दिए लिए और फीसों और इन चीज़ों का इसी तरह इहतमाम होता है। जहाँ से ये उठ जाएगा ना, वहाँ से बरकत उठ जाएगी। तो ये चीज़ें तरबियत का हिस्सा होती हैं, ये कोई चंदा नहीं होता, ये वो नहीं होती कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, यही वो चीज़ें जिससे तज़किया भी होता है और तरबियत, और ये करके आता है, तो गलतियाँ करके सीखते हैं, जो काम करते हैं ना उनकी गलतियाँ भी प्यारी होती हैं। फिर इसके बाद देखिए सरगोशी की जो बात हुई, तो राज की बात किनारे में एक दूसरे को बताने को कहते हैं। ये सरगोशी अमूमन बुराई के मामले में होती है। नजवा क्या होता है, ये सब कुछ है। और इज्तिमाई की बात, रमज़ान के बाद रूहुल कुरान सुनिएगा, जिन्होंने अभी दौरे कुरान किया ना, इसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम तर्जुमा है ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक्सप्लेनेशन है। दोनों सुन लें तो आपका बेहतरीन पैकेज बन जाएगा 2 इन 1 के तौर पे। आगे देखिए एक रिवायत है, एक यहूदी अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, सामु अलैका या अबा कासिम। हज़रत आयशा से रहा ना गया, कहने की वालेकुम अस्सलाम, तुम पे भी मौत हो। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा बुरे अल्फाज नहीं निकालो, सख्त कलामी अल्लाह को अच्छी नहीं लगती। कहने लगे, अल्लाह के नबी आपने सुना नहीं उसने आपको क्या कहा? उनको लगा अल्लाह के नबी ने सामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम में फ़र्क नहीं समझा। कहने लगे, आयशा तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? वालेकुम सेम टू यू, जो तुम मुझे कह रहे हो वो तुम्हें समझ आ रही। तो क्या पता चला कि जब थोड़े लफ्ज़ों में बात हो तो बड़े लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, और जब खुली उंगलियों से घी निकल जाए तो बंद नहीं करते। एक और रिवायत लीजिए आयत 11 के ऊपर, कहते हैं सहाबी, ये रावी है मकातिल रहमहुल्लाह, कहते हैं कि जुमे के दिन ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सुफा में थे, जब मस्जिद के एक छप्पर के नीचे थे, जगह तंग थी। आपकी आदत थी कि जो मुहाजिर और अंसारी बदर की लड़ाई में आपके साथ थे, आप इनकी बड़ी इज्जत और तकरीम किया करते थे। ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने लोगों को कभी ना छोड़ें। वो कुछ कर रहे थे तो आप उनकी इज्जत करें, उनको दुआएं दें, उनको प्यार दें। अब वो नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, आप फिर भी उनसे रब्ता रखें। ये सुन्नत नबवी है। जिन्होंने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है ना इस्लाम के लिए, उनका मुकाम कभी नहीं छुटा। जो किसी कॉज के अंदर शुरू में आ गए वो प्रिजर्व हो गए। तो जब अल्लाह ने कहे बुनियाद की ईंटें नहीं निकल सकती, तो आप अपने दिल दिमाग से उन लोगों को क्यों निकालें? और मेरा ये वीक पॉइंट है, मुझे पुराने लोग कभी नहीं भूलते। हज़ारों नए लोग और उसके मुकाबले में गिनती के 10 पुराने, वो किधर हैं? उनका क्या हाल है? अच्छा वो ठीक है, वो आजकल आ रहे हैं? दिल से नहीं जाते वो लोग, क्योंकि जिस दरख्त के साए में एक दफ़ा आपने ठंडा छाया लिया ना, उसको कभी ना भूलें। जो मोहसिनों की कदर नहीं करता ना, वो दुनिया का सबसे बेफैज बंदा है। इसी तरह जिस बंदे से आपके दिल में हिदायत की जोत जागे, आपको ज़िंदगी का मकसद मिले, आपको भी उसको नहीं भूलना चाहिए। दुआओं की सूरत में और अच्छे जज्बात और अमली कोशिशों की सूरत में, या जो आप कर सकें। खैर, उस दिन इत्तेफाक से चंद बदरी सहाबा देर से आए, तो अल्लाह के नबी के आसपास खड़े हो गए। आपसे सलामु अलैक हुई, आपने जवाब दिया और फिर अहले मजलिस को सलाम किया, उन्होंने भी जवाब दिया। अब ये इसी उम्मीद पर खड़े रहे कि मजलिस में ज़रा कुशादगी देखें तो बैठ जाएं, लेकिन कोई शख्स अपनी जगह से नहीं हिल रहा। जैसे आपको तरावियों में कुर्सी मिल जाए तो आप छोड़ते। अच्छा, एक कुर्सी सामने, एक पीछे, एक सामने भी रखते हैं, पाँव रखना है इसमें। अच्छा फिर मैं इधर बैठ जाऊँ? नहीं, इधर वो मेरा बच्चा बैठेगा। अब लोग अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे और वो बदरी साहबा खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा तो ना रखा गया, नाम ले लेकर बस लोगों को इनकी जगह से खड़ा किया और इन बदरी साहबियों को बैठने को फरमाया। ये है अल्लाह की कदरदानी और नबी की कदरदानी। सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही। अल्लाह हमें भी कदर की तौफीक दे पुराने लोगों की। हज़रत अली ने ख़ुद भी ये वाक़या तफसील से बयान किया। कहते हैं कि एक आयत मुझसे पहले किसी ने इस पे अमल नहीं किया और ना कोई मेरे बाद अमल कर सकेगा। मेरे पास एक दीनार था जिसे तुड़वाया, यानी उसका चेंज लिया। फिर मैंने 10 दिरहम ले लिए, 1 दिरहम अल्लाह के नाम पर किसी मिस्कीन को दे दिया। फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपसे सरगोशी की, तो फिर ये हुक्म उठ गया। तो मुझसे पहले किसी ने अमल नहीं किया, वही सदका देने वाली बात है, और ना मेरे बाद कोई करेगा। और फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। कितने प्यारे थे अल्लाह के नबी के सहाबा। इतात का अजर इबादत से बड़ा है। क्या अली ने ये नहीं कहा, अल्लाह के नबी अब मैं स्टाफ में से हूँ, मैं तो ज़िम्मेदार हूँ? आज आपको होता है कि सिस्टम को बिगाड़ने वाले सबसे ज़्यादा लोग कौन होते हैं? जिनके हाथ में चार्जिस होते हैं। मैं तो इंचार्ज हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जब बड़े लोग रुख्सतों पे आ जाएं तो अगले लोगों ने तो उन्हीं को फॉलो करना। ज़िंदगी में लिख लें, अगर ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू हो रहा है ना, तो सबसे पहले कानून मेरे ऊपर, सबसे पहले मैं मानूंगी फिर मनवाऊंगी। मैंने जिधर डिसिप्लिन को तोड़ा, वहाँ बाकी भी तोड़ने का हक रखते हैं। क्या सीखा? अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है, मजलिसों में कुशादगी पैदा करनी है, इल्म हासिल करना है, نماز قائم رکھنی ہے، زکاة ادا کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ آگے ہے جی آخری رکوع سورۃ مجادلہ کا، 14 سے 22، رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سب کو حاضر ہونا ہے۔ علم تر الی الذین تولوا قوما، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جس پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، منافق نہ اسلام کے ساتھ ہوتا ہے نہ کفر کے ساتھ، یہ اپنے مفاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ اللہ میں حزب و شیطان میں انہیں سے بچا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ دعا کریں کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو کہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جس کی تائید اپنی روح سے کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ سورۃ ممتحنہ میں یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے۔ یہ تھی صحابہ کے رضی اللہ عنہ کی دلیل۔ نماز روزہ تو اپنا تھا، تعلق داری کس سے کیا کیا سے، یہ ایمان کی بنیاد پہ تھی۔ اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ شروع میں شیطان کے غلبے کی بات آئی، تو نوٹ کیجئے گا شیطان کیسے غالب آتا ہے۔ اللہ کا ذکر بھلا کے، باجماعت نماز سے دور رکھ کے، اللہ کے احکامات پر دل تنگ کروا کے، تمناؤں اور خواہشوں میں گھر کر، اور برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کا لقب کیوں ملا اور اولئک حزب اللہ کا ٹائٹل کیوں ملا؟ اس لیے، اب یہ آپ کے دل پہ لکھنے والی باتیں ہیں۔ صحابہ کے دل فسق اور فجور سے پاک تھے، ریبیلیس نہیں تھی، ٹرانسگریشن نہیں تھی، ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ شریف النفس تھے، اللہ اور رسول کی محبت سے سرشار تھے، اور ایمان کی پختگی سے بھرپور دل رکھتے تھے۔ اور مومنین ہوں، مخلصین صحابہ ہوں، ایسے شخص سے کبھی دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھتے تھے جو اللہ کا مخالف ہو۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اور اسی کا بیٹا عبداللہ اپنے منافق باپ کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولتا ہے اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگتا ہے کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ یہ آگے سورۃ منافقون کی تفصیل میں آئے گی بات۔ آپ نے منع فرما دیا۔ ابو بکر کے سامنے ان کے باپ ابو قحافہ نے اللہ کے نبی کی شان میں کچھ گستاخی کے کلمات بول دیے۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور اس پہ انہوں نے کچھ ریئیکشن شو کیا۔ اگر معرف القرآن کی یہ حدیث صحیح ہے، تو آپ صرف اس میں سے یہ بات اپنے لیے لیجئے کہ صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول سے کتنا پیار تھا۔ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ اور رسول کو نمبر ون پہ رکھا، فرسٹ پرائیورٹی، اول نمبر پہ رکھا۔ عبد الرحمن بن عوف کو ان کا مال ہجرت سے نہ روک سکا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو غزوہ بدر میں اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ علی، حمزہ، عبید بن حارث نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکڑا۔ مصعب بن عمیر نے اپنے قیدی بھائی ابو عزیز کو مضبوط قید میں جکڑنے کو کہا۔ عمر نے اپنے سگے ماموں کو غزوہ بدر میں قتل کیا۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو غزوہ بدر میں قتل کیا۔ آج ہوتے تو ہم ان پہ خون سفید ہو جانے کا الزام لگا چکے ہوتے۔ اور آپ کو مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سکپ کر دیجئے، چھوڑ دیں اس کو۔ دعا کیجئے وہ ایمان مل جائے جس میں اللہ رسول سے محبت سب سے اوپر چلی جائے۔ الولا والبرا का असल कॉन्सेप्ट समझ आ जाए जो ईमान का हिस्सा है। रज़ा इलाही के काम, अल्लाह जिन पर गज़बनाक है उनको दोस्त नहीं बनाना, झूठी बात पे कस्में नहीं खानी, अल्लाह की राह से नहीं रोकना, शैतान के काबू में नहीं आना, अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखना, अल्लाह और उसके रसूल के मुखालफों से दोस्ती नहीं रखनी। सूरत मुजादिला का पैगाम क्या है? अपने नफ्स को अल्लाह की खातिर कुचलना, मुनाफ़त वाली दो रुखी ज़िंदगी से बचना और अल्लाह के नबी का सच्चा पैरोकार बन जाना।